Hare Krishna, this lecture on the glories of Vrindavan Ashtakam given in the Jaipur Yatra on 2nd April 2016 by myself Prashant Mukund Das.
तो अभी हम वृंदावन अष्टकम पढ़ रहे हैं और इससे हम सीखेंगे कि धाम में हमें किस तरह से रहना चाहिए. सो दिस अष्टकम रिटन बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है ना. तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? जो हमारे आचार्य परंपरा में जिन्होंने मंगला आरती हमारा गुरु अष्टकम लिखा है, जिसे हम रोज सुबह संसार दावा नाम लोगों गाते हैं. तो वृंदावन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन अष्टकम में 8 श्लोकों में वर्णन किए किस तरह से हमें धाम में रहना चाहिए. तो धाम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली होती है धाम स्थली, दूसरा होता है धामी और तीसरा होता है धाम वासी. तो धाम में 3 चीजें हैं. पहला है धाम स्थली, धाम का स्थल जहाँ पे हम जाते हैं लीला कथा करते हैं, तो उसे कहते हैं कृष्ण लीला स्थली है ना. तो लीला स्थली चाहे विग्रह के रूप में लीला हो या वहां पर भगवान ने स्वयं आकर लीला करी हो या अपने भक्तों द्वारा लीला की हो, तो वो लीला स्थली होती है. तो कहते हैं लीला स्थली में जाकर लीला करने से क्या प्राप्त होता है? उस लीला से आपको आसक्ति होती है और उससे जब आप वापस जाकर जपा करेंगे अपने, तो आपको उस लीला स्थली का चिंतन और स्मरण होगा. और यही तो है जीवन का नाम रूप गुण और लास्ट में लीला. हमारे पास लीलाकांत प्रभु भी है, लेकिन लीला भगवान की जो है वो हमें मिलेगी कब? जब हम लीला स्थलियों पर जाकर कृष्ण लीलाओं का श्रवण करेंगे. तो लीला स्थलियों पर जाकर श्रवण करना ये भगवान का अरेंजमेंट है और लीला स्थलियों पर जाकर कथा करना ये भी भगवान की कृपा है. इसको कहते हैं कृष्ण कथा वर्णन शक्ति. भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बाहरंगा शक्ति. अंतरंगा शक्ति में भी हलादिनी शक्ति, संवित शक्ति, सनादनी शक्ति, कृष्ण लीला शक्ति, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति. तो ये सारी कृष्ण की लीलाएं हैं. तो धाम में बड़ा बैठ जाओ. धाम में धाम इंपॉर्टेंट है, धाम स्थली. धाम वासी, जो धाम के वासी हैं उनसे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. चाहे वो हमें कैसा भी बिहेव करें, अपनी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में बोले, बीड़ी पिए, कुछ भी करें, हमें उनसे झगड़ा या उनका क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए. भगवान की इच्छा से वो धाम में प्रवेश कर पाए और नित्य वास कर रहे हैं. हमारी इच्छा होती है कि अगला जन्म ऐसा हो जो कि हमारी इच्छा होती है, उसमें हम बोलते हैं मोर ए अभिलाष विलास कुंज दिए हुए. अभी उनको वास मिला है, कहाँ पर? विलास कुंज में वास मिला है ना. तो उस विलास कुंज में वो लोग रह रहे हैं, तो उनका हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए है ना. विलास कुंज में रहने वाले, भगवान की रास लीला में सहयोग करने वाले, लीला शक्ति, कथा शक्ति उस स्थान पर लिखने वाले भक्तों का हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए. और फिर तीसरे होते हैं धामी. धामी मतलब धाम में भगवान, जो वहां के धामी जो होते हैं. धामी मतलब भगवान, तो भगवान जो है धाम के धामी होते हैं. तो जैसे करौली के धामी कौन है? राधा मदन मोहन. सिटी पैलेस के धामी कौन है? राधा गोविंद नगर. छोटे बाजार के, छोटी चौपड़ के धामी कौन है? राधा गोपीनाथ. तो इस तरह से धामी होते हैं. तो वृंदावन के धामी है राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम. तो इस तरह से धामी होते हैं. तो धामी के प्रति हमें क्या करना चाहिए? स्पेशल मंत्रास उच्चारण करने चाहिए. गोपीनाथ विग्रह को देखें तो गोपीनाथ के मंत्रास बोले, उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, उनको फ्लावर ऑफरिंग्स करें, उनको डोनेशंस दें, ताकि धाम के अंदर धामी जो है हमें धाम की स्थलियों की जो श्रवण है उसके अंदर हमारी हमें कृपा करें कि हम उन्हें समझ पाए और अपने हृदय में उनको अपने साथ वापिस अपने दिल्ली शहर या जो भी जहां भी हम रहते हैं वहां ले जा सके. तो ये धामी की कृपा से ही होगा. धामी की कृपा के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते. तो आपको लगेगा कि खाली वृंदावन जयपुर करौली धाम है, जहां पर भी भगवान के विग्रह स्थापित है वो धामी होते हैं. जैसे अगर आप नोएडा जाएंगे तो वहां के धामी कौन है? राधा गोविंद. तो आप प्रयास करना चाहिए कि आप नोएडा किसी भी काम से जाएं, भक्तों के अंदर तो ऐसा गुण होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी फंस जाए कोशिश करनी चाहिए कि 5 मिनट धामी के दर्शन करके जाए. उसकी इच्छा के बिना आपका भौतिक कार्य भी संभव नहीं है. तो आप अगर द्वारका आए, द्वारका में तो आप रहते हैं, लेकिन अगर कोई द्वारका है तो वहां के धामी कौन है? रुक्मिणी द्वारकाधीश. तो वहां दर्शन करने चाहिए. तो इस तरह से ये धाम, धामी और धाम वासी, ये 3 चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्य है. तो अभी हम वृंदावन अष्टकम पढ़ेंगे कि ऐसे जो वृंदावन तो यहाँ पर बताया गया है, लेकिन वृंदावन मतलब कोई भी धाम, तो वहां हमारी कैसी भावना होनी चाहिए. इसमें बोल रहे हैं ना योग से धन मामस्तु मोक्षो वैकुंठ लोके अपि न पाशदत्तम्। ओके, इफ यू हैव बुक्स ऑफ वृंदावन अष्टकम तो यू कैन रिपीट आफ्टर मी। न योग से धन मामस्तु मोक्षो वैकुंठ लोके अपि न पाशदत्तम्। चेतरांतो मामस्तु वृंदावन एव वासम्। इसका मतलब है यदि मुझे योग सिद्धि प्राप्त ना हो तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, यदि मेरी मुक्ति ना हो तो इससे भी मेरी हानि नहीं है, यदि वैकुंठ लोक में मुझे पार्षदत्व ना मिले तो अभी मेरी कोई क्षति नहीं है, यदि भगवत विषय विशाल प्रेम भी मेरे हृदय में ना हो तो भी मेरा निवास तो श्री वृंदावन में ही हो पाएगा। तो भक्त की ये अभिलाषा है कि ना तो मुझे योग सिद्धि चाहिए, तो कई लोग बड़े लालची होते हैं भक्त बन जाते हैं लेकिन हृदय में लालच होता है पुराने कर्मों के कारण संस्कारों के कारण, तो वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य चैतामृत कहती है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांता कृष्ण भक्त निष्कामते भुशांता। तो भुक्ति भोगने की इच्छा रखने वाले जो लोग संसार को भोगना चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति जो लोग सोचते हैं संसार के दुखों से अब हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति और भुक्ति मुक्ति सिद्धि सिद्धि की कामना करने वाले मतलब अहिमालिक अडिमालिक सिद्धि महिमा सिद्धि लघिमा सिद्धि, मतलब ये सिद्धि ऐसी है कि हम हाथ बढ़ाए तो ओवरसीज बैंक के अकाउंट में हमारा हाथ पहुंच जाए, और ऐसे है भी हैं जिनका बैंक अकाउंट ओवरसीज बैंक में पहुंच जाता है, हाथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ भी सकते हैं, ऐसे बहुत सारे योगी हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को ऐसे योगी बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बार भक्त आए प्रभुपाद जी के पास और बोले प्रभुपाद एक भक्त एक एक योगी बाबा है सिर पे हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा, अरे प्रभुपाद उन्होंने 40 साल करंट देने की विद्या सीखी है। तो प्रभुपाद बोले 5 रुपए का तार खरीद के लाओ। तो 5 रुपए का तार भक्त खरीद के लाए, प्रभुपाद क्या समझाने वाले। फिर उन्होंने स्विच बोर्ड में लगाया और भक्त के सर पर चिपका दिया, तो भक्त को बड़े जोर से करंट लगा। प्रभुपाद बोले क्या हुआ, भक्त बोला करंट लगा। बोले जो 5 रुपए का काम कर सकता है उसके लिए 40 साल क्यों खराब करने। तो इसलिए लोग जो है कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, तो एक्चुअली ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। भगवान को नमस्कार होना चाहिए और भक्तों को नमस्कार होना चाहिए जो अपने हृदय में सदा ब्रह्मांड नायक कृष्ण को लिए चलते हैं। तो ऐसे योग सिद्धि प्राप्त करने की कामना भक्तों को नहीं होनी चाहिए और न ही मुक्ति की कामना हमें होनी चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। यदि वैकुंठ लोक में पार्षदत्व ना मिले, मतलब अगर मुझे पार्षद बनने का मौका ना मिले भगवान का तो भी मैं खुश हूँ। तो भक्त कई बार वैकुंठ 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 सुन सुन के भगवत गीता पढ़ के ना तद बसाए तो सूर्य ना शशांक न पाहु कहा यद गत्वा न तिर्वत निर्वर्तते तद्धामं परमं मम। सुनते हैं ना वहाँ सूरज की जरूरत है ना वहाँ चंद्रमा की जरूरत है, वैकुंठ धाम में जाने वाले व्यक्ति को वापस इस कुंठा जगत में नहीं आना पड़ता। तो ऐसा सोचते हैं भक्त की वैकुंठ चले जाए बस कैसे भी करके इस जगत को छोड़ दें। कुछ भक्त तो सुसाइड प्लान कर लेते हैं, हमारे बीच भी ऐसे भक्त हैं, तो वो कहते हैं मर जाना चाहते हैं लेकिन क्या करें वैकुंठ धाम चले जाए। लेकिन वैकुंठ जाने से क्या लाभ, भक्त को वैकुंठ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या रहते हैं सुपर लोक में, पृथ्वी के नीचे है तल वितल, उसके बाद है तलातल, उसके बाद है सुतल, फिर है महातल, इस तरह से नीचे फिर पाताल रसातल फिर पाताल, तो इस तरह से 7 लोक नीचे है और 7 लोक ऊपर है। तो भक्त की इच्छा नहीं होती प्रहलाद महाराज या फिर बलि महाराज जो कि आत्म निवेदनम नवदा भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने भगवान जब वामन अवतार लेके आए तो अपना आत्मसमर्पण कर दिया, सब कुछ उनको न्यौछावर कर दिया, कहा कि मैं 2 पग में तो आपने ब्रह्मांड नाप लिया, 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के, अब तीसरा कदम आप मेरे मस्तक पर रखिए, और इसीलिए वो आत्म निवेदन उनके आचार्य बन जाते हैं। लेकिन भगवान ने उनको कौन सा लोक दिया, सुतल लोक, कहा तुम अपने दादा प्रहलाद के पास जाओ और मैं भक्ति करो। तो उन्होंने कहा तुम्हारी कुछ इच्छा है, कह रहे मैं चाहता हूँ नित्य प्रतिदिन आपका दर्शन होता रहे भगवान। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? बोले भगवान आप मेरे द्वारपाल बन जाओ, तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, जैसा भक्त चाहते हैं मैं वैसा करता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। हम तो अभी फंसे हुए देवी देवताओं की भक्ति में, ना मुरादे पूरी कर दे हुआ, और नहीं करे तो फिर ये कोई भक्ति थोड़ी है, ये तो व्यापार है। तो अभी हम उसी में फंसे हुए हैं, तो उस चक्कर से छूटना चाहिए और हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास करें कि हमारा सदा निवास कहाँ हो? वृंदावन में हो। तो इसको कहते हैं नमस्तु वृंदावन एव वासम, मैं तो चाहता हूँ मेरा सदा निवास कहाँ हो? वृंदावन। अब हम आगे पढ़ेंगे, तान जनयत्र विद्यार्चे सद्भक्ता चूड़ामणि रुद्रो अपि। जिस वृंदावन के माधुर्य की विशालता को देखकर ब्रह्मा एवं श्रेष्ठ भक्तों के चूड़ामणि उद्धव ने भी जिस वृंदावन में तृण संबंधित जन्म की याचना की, मैं निवास तो मेरा निवास तो इस वृंदावन में होता रहे। तो ब्रह्मा जी और उद्धव दो लोगों के बारे में यहाँ वर्णन किया है। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, ये तीन जिनके बारे में लोग सोचते यही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक्चुअली ये कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हो? मानस तो वृंदावन ही वासम, हम तो वृंदावन में सदा निवास करें। लेकिन भगवान ने सेवा दी है ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की, विष्णु जी को सृष्टि पालन की और शिव जी को सृष्टि संहार की। अब वो अपनी अपनी सेवाओं में बिजी है, एक कैलाश में विराजमान, एक ब्रह्म लोक में विराजमान है और तीसरे वैकुंठ लोक में विराजमान है। तो वो कहते हैं कि हम वृंदावन की लीला स्थलियों का आनंद, माधुर रस का आनंद का प्राप्त करेंगे। तो उस आनंद के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो द्वापर युग में जब राधा रानी और कृष्ण अपने नित्य लीला करने वृंदावन आते हैं, तो ब्रह्मा जी को बरसाना धाम में ब्रह्म पर्वत बनाकर भगवान भेज देते हैं। इसीलिए बरसाना में चार पर्वत है, मानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़ और दानगढ़। तो ये चार वहां पर बड़े बड़े क्या है, पर्वत है। ब्रह्मा जी के कितने मुंह है, इसलिए बरसाना में भी चार पर्वत है। और जो नंद गांव है जहाँ कृष्ण का जन्म होता है, उस जगह पर शिव जी पर्वत बनकर बैठे हैं, उसका नाम है नंदीश्वर पर्वत। और जो विष्णु भगवान है उनको सेवा में लगाया भगवान ने, क्या बना के रखा, गोवर्धन पर्वत। तो ये तीनों पर्वत हमें वृंदावन में मिलते हैं। तो इन्होंने पर्वत बनना क्यों अस्वीकार किया? व्यक्ति भगवान, व्यक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी वृंदावन में पर्वत बनना स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान के भक्त और उनकी गोपियाँ सदा उन पर्वतों पर विचरण करते हैं। तो भक्त की कामना होनी चाहिए मेरे मस्तक पर भगवान के भक्त अपने चरण रख दें। और इसी प्रकार उद्धव जी जो भक्ति के अंदर पीएचडी थे, लेकिन भक्ति भावना को जानते नहीं थे। ज्ञान और भक्ति बहुत इनको उन्होंने सीखा, लेकिन वो प्रेम भक्ति नहीं सीख पाए। और इसी को सीखने के लिए कृष्ण ने कहा, मैं मेरे संदेश वाहक बनकर आप वृंदावन जाओ और वहां जाकर बोलो कृष्ण आपके बारे में बहुत इंतजार करते, याद करते हैं और वो जल्दी आएंगे। तो जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि यशोदा मैया का घर कहाँ है, राधा रानी कहाँ रहती है? तो उद्धव को भक्तों ने कहा, जी ये झरना देख रहे हैं, नदी जो देख रहे हैं, कह रहे हैं इस नदी को पकड़ के चलते रहिए, कह रहे ये यमुना है, कह रहे नहीं ये यमुना नहीं है, फिर क्या है? बोले इस नदी का नाम है यशोदा नीर। इस नदी का नाम क्या है?
यशोदा नीर।
यशोदा मैया जब से आप गए तब से आंखों से नीर बहा रहे हैं और उनके नीर के बहते बहते एक नदी बन गई है, और इस नदी को पकड़ के आप चलते चले जाएंगे, इसका जहाँ अंत होगा वही यशोदा मैया का घर है। तो ऐसे यशोदा जो रानी है वो हमें सिखा रही है किस प्रकार से कृष्ण हमें प्राप्त हो सकते हैं। इस विरह भावना सिखा रही है कि हमें जब वृंदावन में वास करने का मौका ना मिले, तो वृंदावन में वास होने का मतलब हमारे हृदय में जब वृंदावन ना हो, कृष्ण भक्ति ना हो, भक्तों का संग ना हो, तो हमें हमें विलाप करना चाहिए। तो उद्धव जी ने जब वहां पहुंचे वृंदावन तो उनको उद्धव जी ने बोला, उद्धव जी ने जब गोपियों से पूछा कि आपको दुख नहीं होता कि कृष्ण चले गए यहां से, तो उन्होंने कहा कृष्ण चले गए, कहां चले गए, कृष्ण तो कहीं नहीं गए। कह रहे नहीं, हमने सुना है कृष्ण तो चले गए हैं और वो तो हमारे साथ में द्वारका में रहते हैं और उन्होंने मुझे संदेश वाहक बना के यहाँ भेजा है। तो सारी गोपियां बोली क्या बात कर रहे हो, भगवान झूठ भी बोलने लगे। कह रहे कैसे झूठ क्यों बोलेंगे, वो तो हमारे साथ हैं तो झूठ बोलने की क्या बात है। कह रहे नहीं, उन्होंने कहा है कि वो वृंदावन को त्याग करके कभी नहीं जाते, वो सदा नित्य निवास करते हैं वृंदावन में। अरे अच्छा, कब कहा भगवान ने। तो गोपियां कहती है कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उन्होंने कहा वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति, वृंदावन को परित्याग करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं निकालता। और आप कह रहे हैं कि वृंदावन से चले गए। दुख की सीमा तो तब होती है, जो दुख तो तब होता है जब कोई व्यक्ति हमारे से दूर चला जाए, लेकिन जो सदा हृदय में वास करता है वो दूर रहे ना रहे, फिजिकल फॉर्म से हमारे सामने रहे ना रहे, लेकिन हमारे वो सदा साथ में रहता है क्योंकि वो हमारे हृदय में। तो कृष्ण हमारे साथ हो ना हो, मदन मोहन करौली हमारे साथ हो ना हो, जयपुर हमारे साथ होना हो, लेकिन ये जो विग्रह का दर्शन हम कर रहे हैं भक्तों के संग में, वो सदा हमारे हृदय में विराजमान रहेगा। तब फिर हमें पता चलेगा कि असली प्रेम भक्ति है क्या। तो उद्धव जी ने जब ये सीखा तो वो रोने लग गए, बोले मुझे भी कृपा करो, मुझे भी भक्ति दो ऐसी कि मैं कृष्ण के साथ रह के भी कृष्ण को नहीं समझ पा रहा और आप कृष्ण से दूर रह के भी सदा कृष्ण का स्मरण और चिंतन और प्रेम रस आस्वादन कर पा रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर तुम भी वृंदावन में आके रहने लगो। तो उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, चाहे मुझे लता बनाओ, चाहे पता बनाओ, चाहे किंकर बनाओ, चाहे कांटा बनाओ, लेकिन रखो वृंदावन में। तो उद्धव कुंड जो गोवर्धन परिक्रमा में आता है उसमें उद्धव जी लता पता बनकर आज भी विराजमान है। क्यों? क्योंकि सारी गोपियां जब मटकों में पानी भर के वहां से निकलती है तो उनकी चरण रज जो है वो उद्धव जी के मस्तक पर आती है। और हमें भी प्रभुपाद जी ने सिखाया कि भक्तों को सुबह सुबह उठकर सबसे पहले उद्धव जी को पालन करना चाहिए। कई भक्तों ने बोला है ऑथेंटिक है कि नहीं पता नहीं बोलना, कई लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी उद्धव जी के अवतार हैं, ऐसा बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी उद्धव जी के अवतार है, कुछ भक्त उन्हीं के डिवोटीज बोल रहे थे प्रभुपाद डिसाइपल्स, पर पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं। बोला जाता है शक्ति आवेश अवतार को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन शक्ति आवेश में भी किसका अवतार, तो उद्धव जी का अवतार। तो उन्होंने भी सिखाया कि गोपियों की चरण रज हमें अपने मस्तक में सबसे पहले विराजमान करनी चाहिए, इसीलिए सुबह उठकर सबसे पहले भक्त गोपी चंदन तिलक लगाकर गोपियों की मस्तक अपने उनकी रज अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। तो हमें उद्धव जी से सीखना है, प्रभुपाद जी से सीखना है। इस तरह से अगर हम रोज तिलक धारण करते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, भक्तों की चरण रज धारण करते हैं, मंदिर में मंगला आरती में आने से पहले ही मंदिर के गेट पे हम सब दंडवत प्रणाम करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हमें वहां से दंडवत करने से बहुत कृपा मिलेगी, हम इसलिए दंडवत करते हैं क्योंकि वहां पर कई सौ भक्त ऑलरेडी वहां से होकर गए, उनकी चरण रज हमारे मस्तक में लगे ताकि हम भी उनके जैसे वैष्णव बन सके। तो ये है वृंदावन। एक्चुअली वृंदावन का मतलब वो नहीं है जिसे हम वृंदावन सोचते हैं दिल्ली से 150 किलोमीटर 110 किलोमीटर दूर। वृंदावन मतलब हमारे हृदय में वृंदावन का रहना। इसके तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे, किं ते कृतं हन्त पाशुपीति गोप्यो भूमेस्तु वतरस्कीर्तिम्। ये नाम कृष्णान् निपातु किं तस्मिन् मामस्तु वृन्दावनैव भासम्। रास लीला में श्री कृष्ण के अंतरित हो जाने पर प्रेमिका पताका रूप गोपियों ने भी किम ते कृतः क्षिति, भागवतम के 10वें स्कंध में आया है, अर्थात हे पृथ्वी देवी तुमने ऐसा कौन सा अपूर्व तप किया कि जिससे तुम वृंदावन में श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श रूप उत्सव से पुलकित रोमांचित से सुशोभित हो रही हो। इत्यादि रूप से भूमि के यश की स्तुति जिस धैर्य से की गई है, मेरा नित्य निवास तो श्री कृष्ण चरण चिन्हों से अंकित इस वृंदावन में ही होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वृंदावन की जो भूमि है, वहाँ जो पृथ्वी देवी है, उन्होंने वो जो टुकड़ा है वृंदावन का, एक्चुअली वो इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम में जब राधा कृष्ण नित्य लीला विराजमान थे रासमंडल स्थान में, तो वहां पर जब कृष्ण अकेले थे, राधा रानी भी उनके साथ नहीं थी, तो उनके मन में आनंद की इच्छा आई। क्या इच्छा आई? तो आनंद कब होता है, अकेले या दो लोगों के साथ? आप सोच के देखिए, कभी भी अकेले आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, हमेशा आनंद होता है दो लोगों के साथ। आप कहेंगे नहीं पूछे, हमें तो अकेले होता है, तब भी आप अकेले नहीं होते, कृष्ण आपके साथ होते हैं। तो अकेले आप नहीं हो सकते कभी भी आनंद। तो कृष्ण जो स्वयं कृष्ण है, अब वो अपने से तो आनंद लेंगे नहीं, तो उनको आनंद के लिए किसी को चाहिए था, कोई चाहिए उनको। तो भगवान ने सोचा क्यों ना करके मैं अपना एक एक्सपेंशन करूं अपनी शक्ति का। तो भगवान की तीन शक्ति है, सत शक्ति, चित शक्ति और आनंद शक्ति। सत शक्ति, चित शक्ति और आनंद। सत शक्ति से भगवान शाश्वत सदा विराजमान रहते हैं, चित शक्ति से भगवान जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं सभी के हृदय के अंदर क्या चल रहा है, और आनंद शक्ति से वो सदा आनंद विभोर रहते हैं। ऐसे भगवान ने सोचा आनंद चाहिए तो अपनी आनंद शक्ति को प्रकट करना है। तो उन्होंने जैसे ही सोचा, सोचने मात्र से भगवती के हिलते ही एक स्त्री प्रकट होती है उस रास मंडल में, और आते ही वो सोचती है क्या करूं मैं, अब उनके अंदर से निकली है। तो रास मंडल में वो पुष्प चुनने के लिए दौड़ने लगती है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो रास मंडल में भागने के कारण उस स्त्री का नाम पड़ जाता है राधा। रा का मतलब रास मंडल और धा का मतलब धावन। तो रास मंडल में भागने वाली स्त्री जो है उनका नाम है राधा रानी। तो इस तरह से राधा रानी का प्रकट होता है। तो कृष्ण आनंद चाहते हैं तो राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण जब रास मंडल में थे, तो कृष्ण ने सोचा क्यों ना पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने का समय आ गया है। तो राधा रानी ने कहा, भगवान आप जहां भी जाते हैं तो उससे पहले अनेकों तैयारियां होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, इवन मिनिस्टर्स भी आते हैं, तो उनसे पहले उनके फौजी, उनके इंस्पेक्टर्स, उनके सीबीआई एजेंट्स, उनके ब्लैक कैट कमांडर आके देखते हैं, कोई स्क्वाड आके देखता है कि कोई अरेंजमेंट में कमी तो नहीं है, टॉयलेट का इंतजाम है, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे, कितना क्राउड होगा, कंट्रोल कौन करेगा, बॉम्ब तो नहीं आएगा, पुलिस रहेगी, कितने लोग रहेंगे, प्रोग्राम क्या है, सारी देखते हैं। तो ये छोटा सा एमपी जो होता है वो देखता है, तो जो कृष्ण ब्रह्मांड नायक है उनको कितना देखना पड़ेगा। तो भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया, कहा नक्षत्रों की गणना बदल दो, अब मैं वृंदावन जाने वाला हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नो प्रॉब्लम सर, जैसा बोलेंगे वैसा हो सर, अभी बदल देते। उन्होंने तुरंत रोहिणी नक्षत्र तैयार कर दिया, सबसे उत्तम नक्षत्र, और ऐसा महीना ले आए जिस महीने में न सर्दी न गर्मी न बारिश, तीनों महीने इकट्ठे होते हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी सर्दी, ताकि किसी मौसम को ये ना लगे मुझे इग्नोर कर दिया। तो भगवान वृंदावन में आए। अब आने से पहले उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा, यशोदा मैया, नंद बाबा, और अपने द्वार पर जय विजय को कंस बनाकर भेज दिया, लेकिन शिशुपाल बनाकर, दंत वक्र बनाकर अपने द्वारपालों को भी भेज दिया। तो उन्होंने द्वारपालों को भी भेज दिया, तो द्वारपालों को भी भेज दिया। अब राधा रानी ने कहा आपने सब कुछ तो कर दिया, पर पृथ्वी में हम रुकेंगे कहाँ, हम पृथ्वी जैसी जो है उसके ऊपर तो नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान का बोझ पृथ्वी नहीं उठा पाएगी, है ना, क्योंकि पृथ्वी का बोझ तो स्वयं उनके एक्सपेंशन शेषनाग उठाते हैं, तो भगवान का बोझ कौन उठाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है राधे, तो मैं काम करता हूँ, हम गोलोक वृंदावन का एक टुकड़ी नीचे फेंक देते हैं जो सदा पृथ्वी से अलग रहेगी, और पृथ्वी के ऊपर जैसे स्नो और बादल तैरते रहते हैं आसमान में, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर तैरता रहेगा वो स्थान। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कैसे होगा कृष्ण। तो कृष्ण जिस स्थान में खड़े थे वहां उन्होंने अपनी एड़ी के जोर से एक टुकड़ा आकर धक्का मारा, और वो नीचे आकर क्या बन गया, श्री वृंदावन धाम। तो वो जो 84 कोस है, वो पूरा जो वृंदावन है 84 कोस, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट रमन रेती छठी करा, पर पूरा जो 84 कोस है भगवान ने अपनी एड़ी के टुकड़े से नीचे फेंका, और वो पृथ्वी के ऊपर है, नीचे पृथ्वी है, उसके बीच में हवा है, और उसके ऊपर वृंदावन है। तो जो लोग वृंदावन में भौतिक इच्छाएं लेकर अकेले एंटर करते हैं वो एक्चुअली पृथ्वी पर घूम के आ जाते हैं, क्योंकि उसका नाम वृंदावन दे दिया गया है, यूपी का, उत्तर प्रदेश। लेकिन जो लोग भक्तों के सर में दिव्य चक्षु के साथ भक्ति में अंजन के साथ प्रवेश करते हैं, तो वो उस हवा के ऊपर वाले एरिया वृंदावन में प्रवेश कर पाते हैं, जहाँ उन्हें वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम का दर्शन होता है। ऐसा स्थान है वृंदावन, उसमें हमें सदा निवास मिले ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो ये है जहाँ पर गोपियाँ रास करने के लिए आती हैं। तो ये कब होगा? तो हम कल चर्चा कर रहे थे, अगर हमारे अंदर किंकर की भावना आ जाए, है ना, किंकर की भावना। किंकर की भावना का मतलब है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमी तो किंकर तुम, तो हम है तो तुम्हारा किंकर आमी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुम्हारा किंकर आमी, मैं आपका किंकर हूँ। किंकर का मतलब दास। तो भक्त बताते हैं किंकर को अगर डिवाइड करें तो किम का मतलब होता है व्हाट, और कर का मतलब होता है डू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, इसका मतलब होता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो है किंकर का मतलब। तो दास बनने का मतलब ये है जो दूसरे का आदेश मानकर जो बोले वो करे। जैसे अगर मैं बोलूं कि चाहिए मुझे गर्म पानी चाहिए, मेरा गला खराब है, भक्त बोले नहीं प्रभु जी बहुत गर्मी है, आप ठंडा ले लो, तो ये किंकर नहीं हुआ, ये ऑर्डर सप्लायर हो गया या फिर इंस्ट्रक्शन देने वाला हो गया। क्योंकि जो किंकर होगा वो बोलेगा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जो बोला गया वो मैं करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य को अपने गुरु को एज इट इज फॉलो करने का मतलब है, जो वो कहे वही करना। अगर गुरु बोले मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, तो बोले नहीं नहीं गुरु जी बड़े कमजोर हो गए, थोड़ा दूध ले लो, इसमें पानी भी होता है, कंप्लीट फूड होता है, पानी भी है और इसमें जो प्रोटीन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, तो वो एक्चुअली ज्यादा इंटेलिजेंट शिष्य है, ओवर इंटेलिजेंट है, तो गुरु भी जानते होते हैं। और गुरु के सामने शिष्य को कैसे होना चाहिए? मूर्ख, किच्छू जानी ना, अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, बस जो आप बोले वही सही है सर, बस। तो ऐसा कोई भावना रख सकता है ना, तो अच्छा शिष्य बन सकता है, सादा शिष्य बन सकता है। तो हमें ऐसे वृंदावन में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं उस दिव्य लीला स्थली में, तो हमें किंकर भावना अर्जित करनी चाहिए। और हम चौथा अश्लोक पढ़ते हैं। गोपांगनायं पटत्वे यत्र यस्यां रसमृतमत्वापम्। यतो रसो वेसाइति श्रुतस्तनम् मामस्तु वृंदावनेव वासम्।
नम यतो रसो वास इति श्रुतिस्तनम्।
गोपांगनाओं की प्रेममय आसक्ति ही जिसमें प्राधान है, एवं प्रेममयी जिस आसक्ति में ही रस को पूर्ण परिपूर्णता मिली है, क्योंकि निश्चित रूप से रस के मूर्तिमान स्वरूप तो रस रसिक शेखर नंद नंदन ही है। इस भाव को करने वाले रसो वैसा इत्यादि रूप वाली श्रुति भी जिसमें प्रमाण है, मेरा निवास तो उस वृंदावन में ही होता है। तो गोपांगनाओं की प्रेममयी आसक्ति ही जिसमें प्रधान है, तो वृंदावन वो स्थान है जहाँ पर रसिक शेखर मदन मोहन भी मदन मोहन मोहिनी से जो है मोहित हो जाते हैं। कृष्ण ऐसे हैं जिनकी रास लीला में शिवजी जिन्हें कहा जाता है सबसे अधिक धीर, उनसे वो धीर कोई नहीं है। लेकिन शिवजी ने भी एक बार कृष्ण से रिक्वेस्ट किया, कृष्णा मैंने सुना है मोहिनी रूप लेकर आपने राक्षसों को छल लिया, तो मैं आपके उस मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं शिव, ऐसा मत करो, तुम्हारा नाम धीर पुरुषों में एक है, तुम्हारे लिए बोला जाता है धीरस्तत्र न मोहयते, तुम्हारे ऐसा धीर जो है वो मोह नहीं करता किसी चीज से, तो तुम इन सब चीजों में मत करो। लेकिन शिव जी बोले नहीं सर, एक बार तो दिखाओ ना वो वाला आपका मोहिनी रूप, मैंने आपके सारे अवतार सुने, लेकिन आप बिना किसी मेकअप के, बिना किसी डेंटिंग पेंटिंग के तुरंत स्त्री से पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, तो मुझे वो रूप देखना है आपका। तो भगवान ने कहा अच्छा देख लो, सोच लो। उन्होंने कहा ठीक है दिखाइए। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपना मोहिनी रूप दर्शन शिव जी को दिया, शिव जी का काम वासना जागृत हो गई। कहते हैं कामदेव शिव जी के सामने आया और उनके आंखों से दृष्टिपात पड़ने से कामदेव भस्म हो गया, लेकिन मोहिनी मूर्ति को देखकर शिव जी का भी वीर स्खलन हो गया। तो ऐसे जो शिव जी धीर पुरुष हैं, उनको भी कृष्ण मोह लेते हैं। लेकिन कृष्ण को भी मोहने वाली है गोपांगनाएं, राधिका रानी जिसमें से प्रमुख है। तो ऐसे ऐसी जगह जो है वो है वृंदावन। तो गोपांगनाएं कैसे भगवान को मोह लेती है, ऐसा उन्होंने क्या किया जो भगवान को मोहने योग्य बन गए, तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक डिवोटी को बोले पेंटिंग बनाओ, तो एक भक्त ने पेंटिंग बनाया, कृष्णा के बॉडी बनाया, ऐसी बॉडी जैसे बॉडी बिल्डर की होती है, मसल्स बनाए, एट पैक्स एब्स बनाए और एकदम पावरफुल बनाकर, और जैसे वो होता है एटलस ने ग्लोब उठाया होता है ना हरक्यूलियस, वैसा हरक्यूलियस टाइप का पोस्टर बनाए। तो उन्होंने प्रभुपाद बोले कृष्णा ऐसे नहीं है, उनको बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है ग्लोब को उठाने के लिए, वो तो गोवर्धन पर्वत को कोमल शरीर से उठा लेते हैं, है ना, और ऐसे उठाते हैं जैसे मशरूम को उठाया है, उनको किसी आशक्ति की जरूरत नहीं है, मसल्स की जरूरत नहीं है। अभी वो तो अंग्रेज थे, उनको लगता था कि भैया वेट लिफ्टिंग करने के लिए इतना जिम जाना पड़ता है, तो ग्लोब को उठाने के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा मसल चाहिए होगा। तो कृष्ण को समझ नहीं पाए, प्रभुपाद बोले नो नो, बॉडी बिल्डर इज नॉट कृष्णा, कृष्णा इज नॉट बॉडी बिल्डर, कृष्णा इज ऑल पावरफुल, उनके अंदर सब शक्ति है, एंड वेयर इट डजंट लुक्स लाइक, वो लगते कैसे है, बिल्कुल जैसे यौवन हो, बिल्कुल अभी अभी नया नया बच्चा जो वो वैसे दिखने वाले, जिसपे हर एक लड़की का है वो स्वीट 16 कृष्णा, इतने युवा दिखने वाले कृष्णा जो है वो है कृष्णा, उनको बसल्स वसल्स नहीं है। तो ऐसे जो कृष्णा है ऑल पावरफुल, वो एक बार सर पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो एक एक, एक, एक भक्त ने बनाया, तो प्रभुपाद जी बोले अरे आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मैंने बनाया, सिर में दर्द है प्रभुपाद, किसके, कृष्णा के, क्यों, कह रहे भक्त सुनते नहीं है, अभक्त मानते नहीं है, सृष्टि की रचना की इतनी टेंशन है, चलाना भी है, बनाना भी है, संहार भी करना है, तो कितना टेंशन होगा, एक सीईओ एक मैनेजर को इतना टेंशन है, इसलिए अगर ऐसे कृष्ण है जो पूरे सृष्टि की रचना करते हैं, पूरी सृष्टि का संहार पालन करते हैं, तो उनके सिर में तो दर्द होगा ना, उनके सिर में दर्द होगा ना प्रभुपाद जी, आप कैसी बात करें। तो प्रभुपाद जी बोले नो नो नो, कृष्णा इज लाइक दैट व्हाटएवर ही डू बट ही इज नेवर इंटेंशन, और इसीलिए उनके लोग को बोलते हैं वैकुंठा, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, कुंठा रहित जगत है वैकुंठा। तो भगवान जो वैकुंठपति है, वैकुंठपति, उनको कुंठा कैसे होगी, एंजाइटी कैसे होगी। तो भक्त बोले फिर क्या करें प्रभु, ठहर दे उस पेंटिंग को, प्रभुपाद जी बोले नो डोंट, फिर बोले क्या करें, बोले इसका टाइटल चेंज कर दो, क्या टाइटल लिखे, बोले कृष्णा हैज हेडेक लीला। तो प्रभुपाद से भक्त बोले प्रभुपाद कृष्णा हैज हेडेक लीला, व्हाट इज दिस लीला। तो उन्होंने कहा एक बार गोपांगनाओं की याद करते करते द्वारका में भगवान ने कहा बड़ा विरह वेगना हो रही है गोपियों से मिलने के, और जो द्वारका की रानियां हैं ये सारी कहती है हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हमें कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है, 16,108 रानियां हैं कृष्ण की, अरे 16,000 कहती हैं उसमें से 100 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 जो कहती है उसमें से 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 में से रुक्मणी कहती है मैं इंपॉर्टेंट, सत्यभामा कहती है मैं इंपॉर्टेंट, तो सबके अंदर अहंकार हो गया, मैं अहम ममेति भावना जागृत हो गई। तो कृष्ण तो किसी का भी अहंकार नष्ट कर सकते हैं, उनको कृष्ण कहते हैं हरि मेरा नाम है क्योंकि मैं हरि रूप में आपके अहंकार का भक्षण करता हूँ, और इसीलिए जिसको धन का अहंकार होता है उसका धन छीन लेते हैं, जिसको सुंदरता का अहंकार होता है उसकी सुंदरता छीन लेते हैं, जिसको शक्ति का अहंकार होता है कैशियस के लिए उसकी शक्ति छीन लेते हैं, उसको पैरालाइज कर देते हैं, ही कैन नॉट पिक अ कप ऑफ कॉफी एज़ वेल। तो इस तरह के जो भगवान है वो है भगवान ब्रह्मांड है कृष्ण। तो कृष्ण ने देखा गोपियों को, आज ये जो द्वारका की रानी है गोपियों से अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं, कह रही है हमें कृष्ण का संग मिलता है, अरे गोपियां तो ग्वालिन थी, छोड़ा है उनको, ठीक है बचपन में कुछ गलतियां हो गई, ठीक है उनके साथ खेले कूदे ठीक है, लेकिन हम श्रेष्ठ है, हमारे साथ तो पूरा जीवन गुजार रहा है। तो कृष्ण समझ गए, बोले अच्छा इनको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। तो एक दिन सुबह सुबह उठ के चिल्लाने लगे, अरे बोल मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, गोपियों रानियों सुनो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो रानियां बोली कृष्ण आपके सिर में दर्द हो रहा है, इसका इसका उपाय क्या है, उपाय भी आप ही बताओगे क्योंकि आप ही है सर्व कारण कारण, तो आप ही बताइए क्या उपाय है। तो कृष्ण बोले जल्दी करो, अपनी चप्पल उतार के उसमें से मिट्टी निकाल के मेरे सिर पे लगाओ और उससे मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियां जो रानियां थी वो बोली कृष्ण कैसी बात करते हैं, आप हमारे स्वामी हैं, अगर आपकी चरण रज हमारे मस्तक आपके मस्तक पर लगेगी तो हमें तो नरक मिलेगा। तो भगवान बोले देखो मन में अभी भी ये कहां अटकी हुई है, वैकुंठ में रहे सदा, उनको अब ऑपुलेंस से प्यार हो गया है, ऑपुलेंस छोड़ना नहीं चाहती है, नहीं अभी तो हम फिक्स हो गए हैं कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्णा इज ओनली पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, वो किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कैन किक एनीबॉडी आउट, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता कि अगर वैकुंठ में आया हूं तो कैसे जाऊंगा, ही कैन किक, जाओ विजय जाओ, हाँ ही कैन किक एनीबॉडी आउट। तो वैकुंठ में और पूरे जगत में कृष्ण का राज चलता है, दैट इज द जगतपति है ना, जगदीश, जगत के ईश्वर है वो। भगवान ने किक कर दिया तो फिर क्या कहते, तो भगवान बोले अभी भी अटकी हुई है नरक और स्वर्ग के चक्कर में, वैकुंठ के चक्कर में, चलो। फिर उन्होंने कहा फिर क्या करें, करे जाओ नारद मुनि को बुलाओ। नारद मुनि को बुलाया गया, नारद मुनि को बोला कि क्या, बोले आप अपने चरण पर जिनके मस्तक पर लगा दीजिए, नारद मुनि आप तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का क्या होता है, ब्रह्मचारी का तो कोई घर बार नहीं है, उसको तो आगे पीछे कुछ देखना नहीं होता, सोचना नहीं होता। अरे दे दो जल्दी, तुम जिसका नारायण नारायण करते हो आज नारायण के सिर में धर। बोले ना 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 ना, मैं अगर अपने अपने चरण रज इनके मस्तक पर लगाऊंगा तो करोड़ों करोड़ जन्मों तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो अभी भी अटके हुए किसमें, भगवान के दर्शन में। भगवान अभी ये सोच रहे हैं कि कृष्ण की इच्छा से ऊपर मेरी इच्छा है, वरना कृष्ण की इच्छा परम इच्छा होनी चाहिए, जैसी आपकी इच्छा, किंकर किंकर भावना। लेकिन वो बोले नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, अपनी इच्छा, ब्रह्मचारी हूं मैं, ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। प्लीज डोंट टेक माई आश्रम फ्रॉम मी, इफ यू टेक माई रज आई विल गो इन टू अ डीप हेल ऑफ ग्रस्त आश्रम, ग्रह में बन जाऊंगा मैं। अभी वो आश्रम में अटके थे, तो भगवान ने कहा ये भी सही नहीं है। तो गोपियां रानियां बोली अब क्या करें, सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है। कृष्ण कहे जल्दी करो जल्दी करो। तो वो बोले ठीक है नारद मुनि, आप ना वृंदावन जाओ, ट्राई करो, गोपियों से पूछो। तो गोपियों से पूछा गया और जाकर नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है। तो गोपियां बोली अच्छा इसका उपाय क्या है। तो बोले इसका उपाय है, वो कह रहे हैं कि अगर अपने भक्तों की चरण रज अपने सर पे लगाएंगे तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियां बोली नारद जी आपके दिमाग नहीं है क्या, ब्रह्मा जी के भी नहीं है और आप उनके पुत्र के भी नहीं है। कह रहे ब्रह्मा जी के क्यों नहीं है, अरे ब्रह्मा जी ने पहले हमारी आंखों में पलके बना दी, जब कृष्ण का दर्शन करते हैं तो पलके बार बार बीच में ना आंखों को दर्शन करने नहीं देती, बार बार बंद करती है बीच बीच में। वो सृष्टि का रचयिता पता नहीं किसने बना दिया, भगवान तो बड़े दयालु हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बना दिया, वरना अगर हम रचयिता होते तो भक्तों के आंखों में पलके नहीं होते, ताकि वो साक्षात भगवान का नित्य प्रतिदिन कंटिन्यूअस दर्शन करते रहते हैं। हरि बोल। और उनके बेटे में भी बुद्धि नहीं है, कहे क्यों, सोल्यूशन नहीं बता रहे, सोल्यूशन बताना चाहिए जल्दी जल्दी, इधर उधर प्रॉब्लम बता रहे, सोल्यूशन बताओ। बोले सोल्यूशन है कि चरण रज चाहिए। अरे बोले चरण रज हो लो, पहले दिन भर भर के सबने अपने चरण रज दे दी, लो ले जाओ सब। तो नारद मुनि बोले अरे रानिया द्वारका की कह रही थी तुम्हारी चरण रज कृष्ण अगर लगाएंगे, पहले छोड़कर चले गए थे, अब लगाएंगे ना तो अनंत काल तक तुम्हें कभी कृष्ण का संग प्राप्त नहीं हुआ और नरकों में जाना पड़ेगा। तो गोपियां बोली अगर कृष्ण के सिर का दर्द ठीक करने के लिए हमें अनंत काल तक नरक में रहना पड़े तो हमें मंजूर है। तो ऐसी गोपांगना है जिस स्थान में रहती है वो है वृंदावन। वृंदावन इज नॉट बाकी बिहारी कचौड़ी लस्सी। आगे कहते हैं भांडीर गोवर्धन रास पीठे स्त्री सीम कयोजन पंचकेना,
भांडीर गोवर्धन रास पीठे स्त्री सीम कयोजन पंचकेना, मिति विभद्वात्मत बीचास्मिन् मामस्तो वृंदावन एव वासम्, मिते विभुत्ववाद मिते अपि
इसका मतलब है ये मेरा नित्य निवास, मेरा नित्य निवास तो इस वृंदावन में ही होता रहे। जो भांडीर वट गोवर्धन एवं रासपीठ इन तीन विशिष्ट स्थलों के कारण तीन सीमा वाला है एवं व्यापक होने के कारण अपरिमित होकर भी जो पांच योजन से परिमित है, तो जो 84 कोस है ब्रजमंडल उसके अंदर, अगर कोस को एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, कोस को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 84 कोस बिकम्स 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर ब्रजमंडल है जहां भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अनेकों मूर्तियां स्थापित करी। लेकिन उस 84 कोस में से भी मुख्यता जिसे भगवान ने मुख्यता दी वो है भांडेर वन, गोवर्धन और रासपीठ मतलब सेवा कुंज जो वृंदावन है। तो इन तीन स्थानों को 5 योजन बताया गया, 5 योजन, 1 योजन में 5 किलोमीटर होते हैं, तो 5 योजन मतलब
25 किलोमीटर,
नहीं सॉरी 8 किलोमीटर होता है 1 योजन, तो 5 योजन मतलब 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर का जो एरिया है आउट ऑफ दैट 252 किलोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत के अंदर कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है मथुरा, क्योंकि वहां भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और जो मथुरा है उससे भी श्रेष्ठ है बारह वन, क्योंकि उन वनों में भगवान अपनी गुह्यतम लीलाएं करते हैं। और उन बारह वनों से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि उसमें भगवान अपनी रास लीला करते हैं। और वृंदावन में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने अपने हाथ से उठाया था। भगवान ने गोवर्धन को हरिदास वर्यम कहकर पुकारा, दासों में सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन। और स्वयं भगवान गोवर्धन में प्रवेश कर गए और कहा कि मैं और गोवर्धन में कोई भेद नहीं है। तो इस तरह के जो गोवर्धन है भांडीरवट है, और गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन के अंदर विराजमान उनके दो नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड। तो राधा कुंड जो है उस पूरी भूमि का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है। तो इस तरह से ये 40 किलोमीटर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। तो इसमें जो भांडीर वन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई भक्तों ने उसको सुना है, कई भक्तों ने नहीं सुना, कई ने देखा है, कई ने नहीं देखा। तो लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, राधा और कृष्ण की शादी तो हुई नहीं, फिर उन्होंने ऐसी लीलाएं क्यों करी, ये क्या सही है अपने तरीके से? तो वैसे तो ये पूरी सृष्टि किसकी है? भगवान की। आपका पर्स गिर जाए या आपका मोबाइल गिर जाए और आप उठा के उसको उसको अपने पॉकेट में रखें, बैक पॉकेट में रखें, बैग में रखें, गले में लगाएं, उसको किस करें, कोई प्रॉब्लम है? कोई बोलेगा? लेकिन किसी और की सीट से मोबाइल गिर जाए और तुरंत उठा के अपने पॉकेट में रखें तो क्या बोलेंगे? तो इस तरह के ये पूरी सृष्टि जब कृष्ण की है तो राधा रानी और गोपिका किसकी है? कृष्ण। तो अगर उनके साथ वो लीला करते हैं, उनको गले लगाते हैं, चुंबन करते हैं, उनके साथ रास करते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अपनी चीज के साथ तो कोई कुछ भी कर सकता है। ये प्रॉब्लम तो उन लोगों की है जो ये सोचते हैं ये चीज हमारी है और कृष्ण अलग है। एक्चुअली सारी चीजें कृष्ण की है ना, सारी चीजें उन्हीं को बिलोंग करती है। तो इस तरह से वहां, लेकिन फिर भी जो भौतिकवादी लोग हैं उनको उनको समझाने के लिए भगवान ने विवाह लीला करी अपनी। तो वो स्थान है भांडेर वन। तो भांडेर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के समक्ष, व्रजभानु महाराज और नंद बाबा के समक्ष वहां पर विवाह किया। कैसे किया? तो एक बार जो नंद बाबा थे वो ग्वाले थे, उनके पास गाय बकरियां थी बहुत सारी, राजा थे लेकिन गाय चराते थे, वैश्य थे। वैश्य का धर्म था गो रक्षा और वाणिज्यम, गो रक्षा करना और खेत कृषि करना, मतलब खेत करना और गायों पालना, तो इस तरह से वैश्य का कर्म था। तो वो वही करते थे और उसके राजा थे, 900,000 गाय थी घर में, है ना। तो उस समय जो गाय पालन था वो बहुत ही श्रेष्ठ था। आप देखिए गाय पालन जो है वो अब गड़बड़ हो गया है आजकल, ना गाय है ना गाय का दूध है, लेकिन फिर भी हम गौशाला लाते हैं, तो गौशाला एक्चुअली सही नहीं है। गाय को रखने का तरीका है वॉक करना, जैसे हमारे दो पैर हैं, तो हमारे लिए अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रखना है तो प्रभुपाद जी कहते हैं 4-5 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। तो गाय के कितने पैर हैं? 4। तो उसको कितने किलोमीटर करना चाहिए? 20 किलोमीटर रोज वॉक करना चाहिए। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाओं में गौचारण लीलाएं करें कि गाय को चराते, इसलिए गाय एकदम शुद्ध दूध देती थी। लेकिन आज गायों की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि गायों को चरने के लिए चारा नहीं है, घूमने के लिए स्थान नहीं है, छोटी जगह जंजीर से बांध के रख देते हैं, तो वो एक्चुअली गौ सेवा नहीं है। वो तरीके से गौ सेवा तभी है जब उन्हें गौचारण के लिए ले जाए। तो प्रभुपाद जी ने कई विलेज कम्युनिटीज बनाई है, जैसे न्यू वर्जीनिया में न्यू वृंदावन बनाया, वहां पर कई कई किलोमीटर तक, हेक्टर तक भक्त पैदल चलते हैं, गायों को चराते हैं, फिर शाम को लौट कर आते हैं, फिर उनका दूध निकालते हैं, उससे प्रसाद बनाते हैं, वो भी भगवान को भोग लगाते हैं, उनका जीवन बिल्कुल डिफरेंट है। और कभी उस पहाड़ी से नीचे भी नहीं उतरते। संसार में क्या हो रहा है, कौन सी नई फिल्म आई है उनको नहीं मालूम। फैमिली में वाइफ भी वही रहती है, बच्चा भी वही रहता है, वही गीता पढ़ता है, उसको ना ABCD पता है ना वो पढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहे तो श्लोक पर भगवान कृष्ण को कृष्ण मान, अब तेरे को दूध तो गाय दे रही है, अन्न तुझे खेतों से मिल रहा है, फल तुझे पेड़ों से मिल रहा है, नीचे जाने की जरूरत क्या है? तो कई भक्त हैं जो उनके बच्चे हैं, रूपा जी के समय में न्यू वर्जीनिया शुरू हुआ, आज तक नीचे उतर ही नहीं पहाड़ी से। तो ऐसे इस तरह इस चीज को बोलते हैं कृष्ण शरणागति करना। हम लोग तो जाते हैं टच करते हैं, है ना, जैसे खेल होते कबड्डी का गेम, कबड्डी टच करते हैं वृंदावन वापिस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा तरीका ठीक नहीं है। हमें तो परमानेंट आउट हो जाना चाहिए वृंदावन के पाले में, है ना, एक बार पूरा आउट हो जाए, वापिस ही नहीं आ सके इस साइड, उस साइड ही आउट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से वृंदावन है जहाँ पर भांडेर वट में। तो इस तरह से नंद बाबा गाय उच्चारण कर रहे थे, तो उनके मन में उन्होंने देखा विश्वभानु महाराज एक सुंदर सी कन्या को लेकर जा रहे हैं, राधा रानी। उन्होंने कहा काश जब मेरा कृष्ण लाला बड़ा हो तो ऐसी लड़की किसी के साथ इसका विवाह हो। उन्हें नहीं पता था आगे जाके तो है ना बड़ी सारी लड़कियों से विवाह करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उस समय सोचा कि काश इससे विवाह हो जाए। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो तुरंत ही कृष्ण भगवान कैसे हैं, अहम भक्ता वराधानु, जो आपकी इच्छा आती है उसे तुरंत पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने तुरंत ही क्या किया, वहां पर ब्रह्मा जी को इशारा किया प्रकट हो जाओ। धूल चलने लगी, बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी और कृष्ण भगवान तुरंत बड़े हुए है ना, सिर्फ 7-8 साल के, और राधा रानी उनसे 1 साल छोटी है तो वो बन गई 6 साल की, 6 या 7 साल की। और तुरंत ही गार्लेंट्स लेकर ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से गार्लेंट्स लेके आए और एक दूसरे के हाथ में पहनाया और यज्ञ कुंड आ गया, अग्नि प्रवेश कर गई और वहां पर दोनों का विवाह होने लगा। और वृषभानु महाराज एक साइड बैठे और नंद बाबा दूसरे बैठे और देख रहे हैं, इतनी दिव्य लीला चल रही है, ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं, ब्रह्मा जी मंत्र बोल रहे हैं और राधा रानी कृष्ण का विवाह हो रहा है। तो आज भी वो वट वृक्ष है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने आकर राधा और कृष्ण का विवाह कराया। लेकिन हम अकेले जाएंगे, प्रभु जी ने बोला है तो हम चलो घुमाते हैं, ठोकरे खाते हुए गड्ढों में टूटे हुए रास्ते से जाएंगे तो वापिस आ जाएंगे, लेकिन हम कभी जाएं तो भक्तों के साथ जाएंगे तो हम भांडेर वन को सही से देख पाएंगे। नहीं थे तो वो छोटे छोटे 2-2.5 साल के जैसे गोदी में थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया उस समय। कुछ लोग बोलते हैं 3 से 4 थे, कहीं पर लिखा है 6 से 7, तो ये भगवान की लीला है, हम कुछ नहीं बोल सकते फिक्स्ड एज क्या है, तो भगवान की लीला है। हमें इम्पोर्टेंट है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने मैरिज भी कर लिया, जबकि हम कहते हैं हम अपने से खुद से मैरिज नहीं कर सकते, राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैरिज भी कर लिया ताकि आगे जाके लोग ये ना बोले कि रजिस्ट्री दिखाओ, कहाँ हुई है शादी की रजिस्ट्री दिखाओ, तो बोले जाकर देखो भांडेरवट में सर्टिफिकेट दिया ब्रह्मा जी ने, रजिस्ट्री हो रखी है ऑलरेडी। और इसी प्रकार से राधा रानी के हस्बैंड थे अभिमन्यु, वो भी कृष्ण का अवतार है, तो राधा रानी जब उनके साथ रहती है तो उनको कोई अपराध नहीं लगता क्योंकि वो भी कृष्ण विष्णु अवतार है अभिमन्यु। उनकी ड्यूटीज ब्लैक कलर की है पूरे वृंदावन में, जब भी आप जाएंगे यावत नाम का स्थान है जहाँ पर राधा रानी की ससुराल थी, वहाँ उनकी सास और ननद है जटिला कुटिला और साथ में उनके पति अभिमन्यु की मूर्ति है। तो अभिमन्यु जो थे वो वाले अभिमन्यु नहीं है महाभारत के, कृष्ण के राधा रानी के हस्बैंड थे अभिमन्यु, लेकिन अभिमन्यु ने पूरा जीवन कभी राधा रानी को टच नहीं किया क्योंकि वो विष्णु अवतारी है, तो उनको कृष्ण ने कह दिया था ये मेरी शक्ति है और ये मेरी गुणतम लीलाओं में सहयोग करेंगे। तो अगर हम ध्यान पूर्वक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम इस भेद बुद्धि से, इस द्वेष बुद्धि से, इस कामुक बुद्धि से निकल जाएंगे और फिर हम भगवान के ब्रह्मांड नायक होने की स्थिति को समझ पाएंगे। वो है एक्चुअल वृंदावन, कौन दिखाएगा हमको वृंदावन जब तक इस तरह के भक्त नहीं होंगे। आप घूमेंगे भक्तों के साथ में, वो आपको ले जाएंगे कुछ सीनियर डिवोटी, चलो मैं तुम्हें मटका सेल दिलाता हूँ लोही बाजार से, वो वृंदावन नहीं है एक्चुअली। वृंदावन तो उस भक्त के साथ देखना चाहिए जिसमें वृंदावन देखने की इच्छा है, जिसने देखा है उनके साथ जाना, रिक्वेस्ट करें, हाथ पांव जोड़े, जैसे भी करें, ऐसे भक्तों को पकड़े जो वृंदावन देखे। सीनियरिटी उम्र से नहीं होती है, सीनियरिटी होती है किसका भाव कैसा है। तो हम सब इवन मी, हम सबको भगवान के भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए हम उनके साथ में। जैसे हिजोली में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हर साल वृंदावन में कार्तिक यात्रा करते हैं, कार्तिक में वृंदावन यात्रा करते हैं, तो उनके साथ ऐसे गुणतम लीलाएं सुननी चाहिए, उनके मुख से यही लीला वो भी सुनाएंगे। आप कहेंगे वही तो सुना रहे सेम है, और जब उनके मुख से निकलेंगे तो हमारे सीधे हृदय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो मुंह से बोलता है वो कान तक जाता है, जो मुंह से बोलता है वो कान तक, जो हृदय से बोलता है वो हृदय तक जाता है। तो हम मुंह से बोलते हैं इसलिए आपके कान तक जाता है और कान से बाहर आ जाता है, लेकिन जब आचार्य बोलते हैं तो आपको हृदय से निकलता है और आपके हृदय तक जाता है और फिर आपका जीवन परिवर्तन होता है। तो ये है स्थान वृंदावन, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर से है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 6th, यत्राधिपत्यं विषभानुपुत्र्या येनोदयात् प्रेम सुखं जनानां,
यत्राधिपत्यं विषभानुपुत्र्या येनोदयेत् प्रेम सुखं जनानां,
यस्मै मामाशा बलवत्यस्मिन् मामस्तु वृन्दावन एव वास,
वृंदावन एव वास।
जिस वृंदावन में विषभानु नंदिनी का आधिपत्य है, एवं जिस वृंदावन के द्वारा भक्तों में भगवत संबंधी प्रेम सुख प्रकट हो सकता है वो वृंदावन मेरी बलवती आशा है, मेरा नित्य निवास तो इस वृंदावन में ही होता है। तो भक्तों की इच्छा होती है कि हमारा निवास कहाँ हो, तो एक्चुअली कई भक्त है जो कि रोज आरती गाते हैं, मोरे अभिलाष अमेरिका विच दियो वास, या फिर गाते हैं मोरे अभिलाष लंदन विच दियो वास, आवाज तो आ रही होती है मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो, लेकिन मन में चल रहा होता है हाँ लंदन विच दियो वास। एक मिनट होल्ड करिए, एक फोन आ रहा है, इनको बोलिए होल्ड होल्ड, बोलो नहीं बोलिए कि प्रोजेक्ट भी टाइम लगेगा, रिकॉल कर लो। हरे कृष्णा, हम आपको कॉल करेंगे, अभी टोल प्लाजा पे है। वृंदावन में विश्वानु नंदिनी का आधिपत्य है, जिस वृंदावन के द्वारा भक्तों में भगवत संबंधी प्रेम सुख प्रकट हो सकता है, वृंदावन में बलवती आशा है। तो वृंदावन बलवती आशा है, ये आशा नहीं होनी चाहिए कि हमें लंदन में हमें आश्रय मिले या अमेरिका में आश्रय मिले, वृंदावन में आश्रय मिले ये हमारी आशा होनी चाहिए। तो सच्ची आशा तब होगी जब हम विश्वानु नंदिनी का जो आधिपत्य है उनसे प्रार्थना करके वृंदावन में प्रवेश करेंगे, है ना। तो विश्वानु नंदिनी जो है वो राधा रानी है, और राधा रानी हमें कहाँ मिलती है हमारे जीवन में, राधा रानी मिलती है हमें गौरांग महाप्रभु के रूप में, और कहाँ मिलती है, और हमें मिलती है राधा रानी गुरु के रूप में, तो गुरु के आदेश अनुसार ही। I know. Ask him that I will call him in 15 minutes. So, इस तरह से जो राधा रानी है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में हमारे जीवन में, और गौरांग महाप्रभु हमारे जीवन में जो है गुरु के रूप में है। तो हमें यहाँ लिखा है जिसका आधिपत्य राधा रानी हो द्वारा होता है, तो धाम का आधिपत्य किसके किसका हो गया, राधा रानी के आगे किसका हो गया, गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के आगे किसका हो गया, गुरु का हो गया। अभी गुरु के बिना अगर प्रवेश कर गए अधिपति के बिना, जैसे आप किसी के घर में बिना किसी के बताए घुस जाओ तो क्या कहलाओगे,
तो आप फिर घर में बिना गुरु की इच्छा से प्रवेश करते हैं तो क्या कहलाते हैं,
ये हमारी स्थिति है। तो हमें वृंदावन अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें हमेशा जहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर महाप्रभु गए, ऐसे स्थानों में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर महाप्रभु नहीं गए, है ना। तो जैसे एक भजन में आता है ना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जही स्थाने गौर जही स्थाने भ्रमण करी, हाँ तो हमें भक्तों के स्थानों में उस स्थान में जाना चाहिए जिस स्थान में गौरांग महाप्रभु गए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो हमें भक्तों के स्थान में उन स्थानों में जाना चाहिए जहाँ चैतन्य महाप्रभु है, अपनी इच्छा से उन स्थानों में। तो वृंदावन के 12 वनों में चैतन्य महाप्रभु गए हैं, मायापुर में महाप्रभु का जन्म हुआ है, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु गए, साउथ इंडिया में महाप्रभु गए, तो जिन जिन स्थानों में महाप्रभु गए हमें वहीं जाना चाहिए, या फिर जहाँ हमारे गुरु हमारे साथ हो तब हमें जाना चाहिए। अकेले हम जाते हैं तो हम सड़कों को नाप तोल के वापस आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होता। आगे कहते हैं अब हम 7th श्लोक पढ़ रहे हैं इसका, यस्मिन् महारास विलास लीला न प्राप्यं या श्रीवति सा तपो भी,
यस्मिन् महारास विलास लीला न प्राप्यं श्रीवति सा तपो
भी, तत्रो न समंजो निकुंज पुंजे मामस्थो वृंदावन एव वासम्, महारास विलास की लीला को नारायण पत्नी लक्ष्मी देवी
अनेक तपस्याओं के द्वारा भी नहीं प्राप्त, तो आप सोचिए नारायण की पत्नी नहीं प्राप्त कर पा रही वृंदावन को, तो हमारी क्या वैल्यू है। कि स्वयं भगवान कृष्ण के अंश पूर्ण अंश नारायण को नारायण की पत्नी होकर प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हम हमारी क्या स्थिति है कि हम भगवान की महारास विलास लीला में जो वृंदावन है उसमें एंट्री कर पाएंगे। जब लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी को क्यों प्रवेश नहीं मिला वृंदावन के रास में? उन्होंने सोचा मैं भी रास में एंट्री करूंगी, रास लीला में कृष्ण गोपियों के साथ में झूम रहे, एक आध चक्कर मेरे साथ भी काट लेंगे किगली का, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। ललिता सखी ने विशाखा सखी ने रोक दिया, सॉरी मैडम नो एंट्री, पास लेके आओ। उन्होंने बोला कि क्या करें, आपकी एंट्री कैसे मिलेगी? तो क्यों एंट्री नहीं मिली लक्ष्मी देवी को पता है? क्योंकि लक्ष्मी देवी को जैसे पहले भी बताया, उनको अहंकार था अपने ऑपुलेंस का कि मैं कौन हूँ, नारायण की पत्नी। उनके मन में अगर होता कि मैं नारायण की दासी हूँ तो उनको प्रवेश मिल जाता। नारायण की पत्नी होने का स्टेटस डेजिग्नेशन ये जब तक रहेंगे, वृंदावन का दर्शन बहुत मुश्किल है, धाम का दर्शन बहुत मुश्किल है। तो लक्ष्मी जी को रोक दिया। लक्ष्मी जी जिस स्थान पर बैठी उस स्थान का नाम है क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं कौन सा वन है? नहीं नहीं काम्य वन नहीं, अपने यमुना के किनारे कौन सा वन है, बेलवन। बेलवन जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी ने शिव जी से प्रार्थना करी कि शिव जी मेरे को एंट्री नहीं मिली। शिव जी बोले आपको क्या नहीं मिली मैडम, मुझे भी नहीं मिली। तो बोले मतलब, बोले मैं भी आया था एंट्री के लिए, तो मुझे बोले आप भक्त हो, भक्त की भावना से आए हो, पर आपका कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, तो हम पैंट शर्ट पहन के वृंदावन में प्रवेश करें, धाम में प्रवेश करें तो मुश्किल होता है, प्रवेश नहीं मिलेगा। टूरिस्ट की तरह आप घूम सकते हो, आप फोटो भी खींच सकते हो, फेसबुक पे अपलोड भी कर सकते हो, पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा मतलब, बोले अपने भाव को चेंज करो, अंदरूनी कॉस्ट्यूम चेंज करो, एक्सटर्नल कॉस्ट्यूम चेंज करो। मतलब बोले अंदर भाव होना चाहिए, काम वासना लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए कृष्ण के संग में, और दूसरा आपके शरीर में गोपी ड्रेस होनी चाहिए। तो बोले ऐसे कैसे करूंगा, मैं तो शिवा हूँ, मैं तो एक पुरुष हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा रुको। तो ललिता सखी विशाखा सखी ने उनको कुंड में स्नान कराया, मानसरोवर में, एक स्थान है मानसरोवर, और उसमें राधा रानी ने एक बार मान किया था, तो उनके नेत्रों से मान, उनके वो जल भर गया था मान टूटने पर, रोने से उसे मानसरोवर गया। तो उसमें स्नान कराया, स्नान करते ही शिव जी का शरीर और भाव दोनों बदल गया और वो क्या बन गए, गोपी बन गए। इसीलिए जिस स्थान में वो रहते हैं उसका नाम है गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, मानसरोवर बेलवन के पास में ही है, अपने यमुना के किनारे बेलवन है 2 किलोमीटर केशी घाट से और उसी के पास। तो उस स्थान में तपस्या करी ललिता विशाखा सखी ने। राधा रानी ने कहा लक्ष्मी जी आफ्टर ऑल जो है वो कृष्ण की पत्नी है, उसको रासलीला में प्रवेश नहीं मिला, पर एटलीस्ट उनको तपस्या करने के लिए स्थली दो। तो उस स्थान पे उन्होंने तपस्या करी, उनके लिए प्याऊ बनाए गए, तो उसे गोपी प्याऊ कहते हैं, उनके लिए सारा अरेंजमेंट किया गया तपस्या करने, उनके लिए घर बनाया गया, रहने खाने की व्यवस्था, प्रसादम 24 आवर्स का रखा गया ताकि लक्ष्मी जी को कोई डिफिकल्टी ना हो, बट स्टिल शी वॉज नॉट एबल टू एंटर वृंदावन। तो बेलवन में अभी भी लक्ष्मी जी विराजमान है और तपस्या कर रही है, शायद किसी दिन मुझको कृष्ण रासलीला में प्रवेश करना है। तो लक्ष्मी जी को नहीं प्रवेश मिल रहा है, तो हम थोड़ी सी लक्ष्मी पॉकेट में लेके सोचते हैं हम प्रवेश कर लेंगे। डोंट वरी आई हैव मनी लक्ष्मी इन माई पॉकेट, इफ लक्ष्मी कांट एंटर हाउ कैन यू एंटर, नो लक्ष्मी पति कैन एंटर। तो ये है वृंदावन की स्थिति। आगे कह रहे हैं सदा रुरो मुख मुखा विशांकं खेलं तकुजं तपुला पिकालिकी नाम शिखंडिनो यत्र नटन्ति तस्मिना नामस्तो वृंदावन एव वासम्। विशंकं खेलन्ति कूजन्ति पिकालिकीवा शिखंडिनो यत्र नटन्ति तस्मिन् नामस्तो वृंदावन एव वासम्। जिस वृंदावन में रुख मतलब काला मृग, मेंक मतलब सींगों वाला मृग आदि अनेक मृग निशंक खेलते रहते हैं, एवं कोयले भ्रमर गाने गाती हैं, तोता आदि अनेक पक्षी जिसमें हम गूंजते रहते हैं, एवं मयूरगण मोर जिसमें नाचते रहते हैं, उस वृंदावन में मेरा नित्य निवास हो। तो अभी मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, रियलाइजेशन है कि हमें वृंदावन जब जाएं तो वृंदावन में हमें फ्लैट खरीदना या भूमि खरीदने के लिए बहुत लालायक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम देखा गया भक्त जब वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन जाने से पहले बहुत सारे बोर्ड पढ़ते हैं, ओमैक्स हाइट्स और दिस हाइट्स, पीयूष ग्रुप और पता नहीं बहुत सारे, और मन में तुरंत आता है प्रभु जी आगे आके तो हमें वृंदावन में रहना है, बहुत सुन लिया तो क्यों ना आज एक फ्लैट खरीद लें। तो एक्चुअली फ्लैट खरीद कर हम फ्लैट हो जाएंगे। वृंदावन में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आए, उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी। एक भक्त थे, उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कहा, बाबा जी आप चतुर्मास में वृंदावन में वास करते हैं, डोंट वरी आई हैव परचेज वन लैंड इन वृंदावन। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा तो झूठा है, मायावादी है। उन्होंने कहा मतलब? बोले वृंदावन में कोई जमीन खरीद सकता है क्या? बोले मतलब वृंदावन की एक कण जो क्या है, चिंतामणि रत्न का बना हुआ है, एक कण का मोल चुकाने के लिए तेरा पूरा जीवन चला जाएगा, तेरी पूरी लक्ष्मी कम पड़ जाएगी, और तू कहता है मैंने जमीन खरीद ली। वृंदावन को तो कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो उसमें जमीन खरीदना या फ्लैट खरीदना ये सब तो जो है जो भी करते हैं, हाँ उसके पीछे भाव हो सकता है कि आप अपना भक्त आके रुकेंगे, सेवा करने के भाव हो सकता है, एक बड़ा सा हॉल खरीदे कीर्तन कथा होगी तो ठीक है, लेकिन कुछ भक्त मैंने देखा है ओल्ड एज होने से पहले प्री प्लानिंग करते हैं, वहां पर टीवी लगाते हैं, एसी लगाते हैं, नीचे कार रखते हैं, रोज मंगला आरती आते हैं और कहते हैं कि हम वृंदावन में वास करते हैं। एक्चुअली वो वृंदावन में वास कर रहे हैं, करना चाहिए वृंदावन को अपने हृदय में, अब जाए दिल्ली में रहो, लेकिन वो क्या करते हैं दिल्ली को अपने हृदय में रख के वृंदावन में रहते हैं। तो एक्चुअली वो वाले वृंदावन में नहीं है देव वृंदावन, वो यूपी वाले वृंदावन, उत्तर प्रदेश वृंदावन में, तो वो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन का ओरिजिनल वृंदावन का मतलब है जहाँ मृग हो, मयूर हो, कोयल हो, तोते हो। तो तोते जो है ना वो भजन गाते रहते हैं सदा राधा कृष्ण का, उसे बोलते हैं सारी, सुर और सारी है ना, सुर सारी। तो एक बार जब महाप्रभु वृंदावन में आए, आज से 500 वर्ष पूर्व 1515 में जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया, तो सुर और सारी, एक तोता और एक फीमेल तोता जैसे, तोती जैसे बोलते हैं तोती, तो वो उनके एक लेफ्ट हैंड पे बैठ गया, एक राइट हैंड पे बैठ गया और दोनों बातें कर रहे थे। तो चेतन महाप्रभु ने कहा जरा सुनो तो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। तो तोता कह रहा था तुम्हें मालूम है मैं किसका डिवोटी हूँ? तो तोती ने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम किसके डिवोटी हूँ। तो तोता बोला मेरे भगवान का नाम है मदन मोहन हरिबोल। अच्छा तुम्हारे मदन मोहन है? तो क्यों सारी थी तोती फीमेल पैरट, वो बोली बस तुम्हारे मदन मोहन तो मेरे भगवान के आगे बिक जाते हैं। अरे अच्छा अब कृष्ण से बड़े, मदन मोहन से बड़े भी कोई भगवान होते हैं क्या? तो सारी बोली हाँ मेरे जो भगवान है उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो तोता जो है ना बोलेगा क्या 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 चुप कर जा चुप कर जा चुप कर जा। तो इस तरह से चेतन महाप्रभु ने गुरुतम उसको सुना, एक बहुत सुंदर भजन है मुझे याद नहीं है, उसमें पूरा वर्णन है सुर और सारी संवाद, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं राधा और कृष्ण की। वो बोल रहे हैं मदन मोहन ग्रेट है, वो कह रहे हैं मदन मोहिनी ग्रेट है, कह रहे कृष्ण ग्रेट है, कह रहे राधा ग्रेट है। My God wears yellow garments. Sari says, my God wears blue garments. Mine is more powerful. Mine is more powerful. इस तरह से दोनों का कॉम्पिटिशन चल रहा है, महाप्रभु देख कर रस स्वादन कर रहे हैं कि दोनों मेरे अंदर विराजमान है और हमारे बारे में सुर सारी जो है ना। तो ऐसे पक्षी मिले वो है वृंदावन। हमें तो सुअर मिलते हैं भुर भुर करते हुए है ना वृंदावन में, क्योंकि हम भी वैसी मेंटेलिटी के, हमें भी सुअर ही नजर आते हैं, हमें तोते मिलते हैं जो राधा कृष्ण की गीतम लीलाएं गाने लगे। तो अगली हमें वैसा वैसा वृंदावन देखना है तो उसके लिए हमें अपना पूर्ण शरणागति करनी पड़ेगी भगवान और भगवान के भक्तों के अंदर। तो वैसे देखा जाए तो हम लोग सुवर हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो सुवर होते हैं, वर मतलब वर वधु का पति वर, और सुवर मतलब वो अच्छा वर है, लेकिन फास्ट जब जल्दी से बोलते हैं तो बोलते हैं ये सु, ये जो है वर वधु है और ये सुवर है। तो आखिरी में बोला गया है वृंदावनस्य अष्टकमेतदुच्चे पठन्ति ये निश्चल बुद्धिस्ते वृंदावनेशाग्रे सरोज सेवां साक्षात् लभन्ते जनशान्त एवम्।
पठन्ति ये निश्चल बुद्धि अस्ति वृंदावनेशांग्रे सरोज सेवां साक्षात् लभन्ते जनो शान्त एव। निश्चल बुद्धि वाले जो व्यक्ति वृंदावन के इस अष्टक को ऊंचे स्वर से भाव पूर्वक पाठ करते हैं वो व्यक्ति वृंदावनेश्वरी श्री राधा कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा को इस जन्म के अंत में साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। वृंदावन अष्टकम की, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की, शैल प्रभुपाद की, रताय रताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्ण। सो यू गॉट योर आंसर?
Totality.
Thank you, sir. Okay.